कोई त्यौहार है मजहबी त्यौहार हैं जैसे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, पर कुछ त्यौहार नेशनल त्यौहार हैं। दिवाली कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, होली कोई मजहबी त्यौहार, देर आल जैसे कहना चाहिए मौसमी त्यौहार है। वैसाखी नया साल का दिन, कुछ त्यौहार मिलकर मनाएं, जैसे हमारे यहाँ देखिए किसी भी शादी हो गमी हो तो आपको हर जगह सिख भी मिलेंगे, वहाँ पर जैन भी मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, मुसलमान कोई नहीं मिलेगा। आपके यहाँ शव को अग्नि देना ये तो कुफर है, ये हमारा एक रिवाज है। एक आदमी जलाता है जलाने तो तुम्हें जाने में तकलीफ क्या है, एक आदमी दबाता है जाने में तकलीफ क्या है। ये कुछ जो दिमागों के अंदर मजहब के नाम पर जो गहराई डाली गई है ये दूर करनी होगी।
ये आवाज है भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज मधोक की। नई पीढ़ी के लोगों ने शायद ही बलराज मधोक का नाम सुना हो, लेकिन किसी दौर में वो भारत की दक्षिणपंथी राजनीति के सिरमौर हुआ करते थे। वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने रूप भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। बलराज मधोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और भारतीय जनसंघ का पहला घोषणा पत्र उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था। बलराज मधोक को नजदीक से जानने वाले संडे गार्डियन के कार्यकारी संपादक पंकज वोहरा बताते हैं।
बलराज मधोक को मैं मानता हूं कि वो जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है इसके ओरिजिनल फाउंडर, क्योंकि जब जनसंघ की स्थापना हुई इन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, लेकिन श्याम प्रसाद मुखर्जी ज्यादा रहे नहीं, उनका इंतकाल हो गया था। तो बलराज मधोक एक आइकॉनिक फिगर बनकर और हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सबसे बड़े जो प्रतीक थे, सबसे बड़े सिंबल थे, और इन्होंने कई चीज़ें हिंदुत्व पॉलिटिक्स की 1946 में 1946 में पार्टीशन से पहले भी लिख दी थी। एक वर्ल्ड व्यू था उनका अपना, उन्होंने बहुत सारी जनरेशन्स को, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो इवन मोदी जी हों, चाहे डॉक्टर स्वामी हों, इन सबको इन्फ्लुएंस किया था, चाहे वो उसको एक्नॉलेज करें या ना करें।
1967 में बलराज मधोक के अध्यक्ष काल में ही भारतीय जनसंघ ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में 35 सीटें जीती थी। यही नहीं, पंजाब में जनसंघ की संयुक्त सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 8 प्रमुख राज्यों में जनसंघ मुख्य विपक्षी दल बनने में कामयाब हुआ था।
भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, अगर उनके ग्रोथ पैटर्न को देखा जाए, जो दिल्ली था ये न्यूक्लियस था एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो सेफरन और हिंदुत्व पॉलिटिक्स फैली है उसकी सबकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से, उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन और एफिलिएशन जनसंघ की तरफ बढ़ गया था। बलराज मधोक जी के टाइम पे दिल्ली शहर के अंदर 7 सीटों में से 6 सीटें जनसंघ ने जीती थी और ऑल इंडिया में 35 सीट जीती थी और वहाँ वहाँ पे विक्ट्री हासिल की थी जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। तो उनका ये प्राइम था, पीक ऑफ हिज करियर।
मधोक 1961 में नई दिल्ली और 1967 में दक्षिण दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सचिव थे। उन्होंने एक दर्जन से अधिक किताबें लिखी और 1947-48 में ऑर्गेनाइजर और 1948 में वीर अर्जुन का संपादन किया। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय बताते हैं।
प्रोफेसर बलराज मधोक को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिक नेता के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन उसके साथ यह भी हमेशा लोग जोड़ देंगे कि वे लगातार अपना महत्व स्वयं घटाते गए और उन्होंने पहले अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को नाराज किया और वह नाराजगी का जो दायरा था वो बढ़ता गया और अंततः वे अलग थलग पड़ते गए। मेरा ऐसा ख्याल है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद उनको ये ख्याल था कि जनसंघ का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें ही है, दूसरे किसी में नहीं है, और इस धारणा को न तो उनके सहयोगियों ने माना और न ही आरएसएस ने माना। यही मूल कारण है कि उनमें असंतोष और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और उसके कारण से फिर अपने सहयोगियों को वे अनाप शनाप उनके बारे में बोलते थे। मेरा अपना ख्याल यह है कि वो संगठन कौशल में या लोगों को जोड़ना कैसे है, इस कला को वे सीख नहीं पाए।
1968 में जनसंघ अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद जब भारतीय जनसंघ ने उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी को अपना अध्यक्ष चुना, तभी से बलराज मधोक के राजनीति में हाशिए में चले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ओपन पत्रिका के संपादक, एनपीयू लेख, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स में लिखते हैं।
बलराज मधोक वाजपेयी से सीनियर थे और उन्होंने दिल्ली में आरएसएस की शाखाएं खड़ी करने और भारतीय जनसंघ को एक राजनीतिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन तब भी जब वरिष्ठ पद देने की बारी आई तो पार्टी ने उनकी बजाय वाजपेयी को चुनना पसंद किया। तर्क दिया जाता है कि वाजपेयी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो प्रभावशाली भाषण दे सकते थे। गोविंदाचार्य ने मुझे बताया था कि वाजपेयी को तरजीह देने का सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता। मधोक वाजपेयी से उम्र में 4 साल बड़े थे और जनसंघ में अंग्रेजी में भाषण दे पाने वाले सबसे सक्षम व्यक्ति थे। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि किस तरह उन्होंने दिल्ली और उत्तर भारत में जनसंघ की नींव मजबूत की और 60 के दशक में गोहत्या विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका दोष ये था कि वो पुराने विचारों वाले जल्दी आपा खो देने वाले शख्स थे।
वैसे मधोक और वाजपेयी की प्रतिद्वंदिता 60 के दशक की शुरुआत से है। पंकज वोहरा एक किस्सा सुनाते हैं।
जनसंघ के जो और आरएसएस के आज भी जो लोग हैं वो नेहरू जी से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे और वो मानते थे कि कश्मीर के मामले में खास करके नेहरू जी ने गलत नीति अपनाई थी। तो जब ये चुन के आए थे तो सेंट्रल हॉल में ये नेहरू जी को एक दिन बहुत भारी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अटल जी जो यंग एमपी थे और नेहरू जी के नज़दीक माने जाते थे और नेहरू जी उनको प्रमोट करते थे, उन्होंने इनको टोका और कहा कि ये नेहरू जी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आचार्य कृपलानी जो पहले नेहरू जी के साथ थे, बाद में जो है अलग हो चुके थे, वो भी वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने बलराज मधोक जी को बोला, इनकी बातों का परवाह मत करो, अटल जी की बातों का, क्योंकि ये नेहरू जी के चमचे हैं और ये नेहरू जी के रहमो करम पे रहते हैं। तो आपने जो बोलना है आप खुल के बोलिए।
आरएसएस की विचारधारा के अपेक्षाकृत नजदीक होने के बावजूद संघ ने मधोक की बजाय वाजपेयी को तरजीह दी। उस समय भारतीय जनसंघ के चोटी के नेताओं नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी और केआर मलकानी का मानना था कि पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा को थोड़ा और लचीला बनाकर ही पार्टी को व्यापक और मजबूत बनाया जा सकता है। प्रोफेसर मधोक की सोच वाजपेयी से बिल्कुल अलग थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक और द सेफरेंट टाइड द राइज ऑफ बीजेपी के लेखक किंगशुक नाग बताते हैं,
दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों आगे आना चाहते थे, तो दोनों में से एक ही आदमी आ सकते थे। तो वाजपेयी मोर लिबरल थे, मोर एक्सेप्टेबल थे टू अदर पीपल, स्पेशली द आरएसएस लॉबी। एंड बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि फाइट बिटवीन यूपी एंड पंजाब, बिकॉज बलराज मधोक वाज़ अ पंजाबी एंड लॉट ऑफ पंजाबी से दैट इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द यूपी लॉबी, द हिंदुस्तानी लॉबी हैड टेकन ओवर, दैट वाजपेयी आगे निकल गए। पर मैं समझता हूँ कि वाजपेयी बहुत डिप्लोमेटिक थे, उनको बहुत सपोर्ट मिलता था आरएसएस से। नानाजी देशमुख उनके एक बहुत ही कीन सपोर्टर थे, तो इन सबों के एडवांटेज देके वाजपेयी आगे बढ़ गए। और मधोक साहब बहुत स्ट्राइडेंट थे, वो पॉलिटिक्स में इतने अच्छे नहीं थे बट आइडियोलॉजी में बहुत स्ट्रांग थे, तो इसलिए आगे नहीं आ पाए।
बलराज मधोक ने भारतीय अल्पसंख्यकों के कथित भारतीयकरण की थ्योरी दी थी जिसका कई हलकों में भारी विरोध हुआ था। इस मुद्दे पर उनकी पार्टी में भी उनको बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। 1998 में मुझसे बात करते हुए बलराज मधोक ने कहा था,
मुसलमानों को भारत की मेन धारा में लाने की जरूरत है और उसके लिए 3 पग चाहिए। पहला पग यह है कि उनके दिमाग से निकालो कि मुसलमान बनने के कारण तुम्हारा कल्चर बदल गया। तुम्हारा कल्चर नहीं बदला, कल्चर तुम्हारा भैया जो भारत का। मुसलमान बनने के कारण तुम्हारी भाषा नहीं बदली, भाषा तुम्हारी भैया जो तुम्हारे माँ बाप की भाषा थी। उर्दू हिंदी का एक स्टाइल है, मैं भी पसंद करता हूँ, मैंने भी सारी शिक्षा उर्दू में ली, आई लाइक इट, मगर उर्दू मेरी भाषा नहीं है, मेरी भाषा पंजाबी है। तीसरी बात उन्हें यह कहो कि भाई जो देश है माँ है, तुम अरब से प्यार करो, सारे जापानी बौद्ध हैं, वो हिंदुस्तान आते हैं, पुण्य भूमि मानते हैं, मगर जापान से प्यार करते हैं। तुम्हारे मन में हिंदुस्तान के लिए वही प्यार चाहिए जो माँ के लिए है। हिंदुस्तान में इस्लाम के मजहब को एज ए पूजा विधि कोई खतरा नहीं है, मगर इस्लाम की जो पॉलिटिकल हेगेमोनिक आइडियोलॉजी है, यह मिल्लत और कुफर नहीं चल सकता कि जो मोहम्मद को माने वो भाई है बाकी काफर।
मधोक के राजनीतिक विचार हमेशा कट्टर बने रहे, हालांकि उनके समर्थकों की तादाद लगातार घटती गई। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उनकी विचारधारा अप्रासंगिक होती जा रही है। 1947 में हुए भारत के विभाजन को मधोक ने कभी स्वीकार नहीं किया और ताउम्र हर मंच पर उसका विरोध करते गए।
दुर्भाग्य ये हुआ कि उस समय हमने पार्टीशन स्वीकार कर ली, मगर उसकी लॉजिकल क्रॉलिज को स्वीकार नहीं किया। पार्टीशन ने दो बातें स्पष्ट कर दी, ये जो कंपोजिट नेशन की बात थी वो खत्म हो गई, तो इसलिए कंपोजिट कल्चर की बात भी खत्म हो गई। दोनों गलत थी, बेसिकली गलत थी। हर मुल्क का कल्चर कंपोजिट होता है, मगर कोई अपने कल्चर को कंपोजिट नहीं कहता। दुनिया में सबसे अधिक कंपोजिट कल्चर आज अमेरिका का है। नो अमेरिकन विल एवर से इट इज कंपोजिट, उसे अमेरिकन कल्चर। हिंदुस्तान कल्चर हिंदुस्तान कल्चर, उसे इंडियन कल्चर कहो, हिंदू कल्चर कहो, भारतीय कल्चर कहो, वो एक कल्चर है। गंगा के अंदर अनेकों नदियां मिलती हैं, मगर मिलने के बाद गंगा जल हो जाता है। ये गंगा जमने की बात गलत है। जब जमुना गंगा में मिल जाती है तो कोई गंगा के पानी को गंगा जमनी पानी नहीं कहता, उसे गंगा जल कहता।
अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद बलराज मधोक की छवि एक अव्यवहारिक राजनेता की रही। हालात यहां तक गए कि एक जमाने में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे बलराज मधोक को उनकी पार्टी ने ही 1973 के कानपुर अधिवेशन के बाद निष्कासित कर दिया।
बलराज मधोक जी पर्सोना नॉन ग्रेटा बन रहे थे जनसंघ की पॉलिटिक्स में, और उनको वो जो रिपोर्ट थी उनको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर दे दी थी। रिपोर्ट इससे पहले कि डिस्कस होती, उनके मुताबिक जो है आडवाणी जी ने कुछ पत्रकारों को अलग से बुलाया लंच पे, और उनको एक दो को उसको रिपोर्ट्स की कॉपीज दे दी, जो नेक्स्ट डे जब अखबार में छपा इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी गई कि आपने मीडिया को लीडरशिप को देने से पहले कैसे आगे ये लीक कर दी, जबकि इन्होंने लीक नहीं की थी। और जो है इनको लगा कि इनकी जिंदगी और लाइफ डेंजर में है तो उधर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि दीनदयाल उपाध्याय जी की भी हत्या की गई है, कहीं इनकी हत्या ना हो जाए। तो ये बिना कुछ वो किए कानपुर से जो रेलवे लाइन पे की पटरियों पे चलते हुए अगले स्टेशन पे जाकर इन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधा दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद इनका और जनसंघ का नाता टूट गया।
1999 में राष्ट्रपति KR नारायणन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मधोक का नाम उछला था, लेकिन बात बन नहीं पाई थी।
1999 में मुझे याद है जब नए राष्ट्रपति के चयन की बात चल रही थी, उन दिनों प्रोफेसर बलराज मधोक ने संघ के झंडे वालान में संघ के लोगों से बहुत बात की, लेकिन जो उन लोगों का अनुभव था उसके आधार पर उनका नाम तो चला ही नहीं। और आप जानते हैं कि मेरा ख्याल है कि APJ अब्दुल कलाम बने।
96 साल की दीर्घायु पाने के बावजूद प्रोफेसर मधोक ने अपने जीवन के अंतिम 4 दशक राजनीतिक बनवास में बिताए। उनके बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का युग शुरू हुआ और मधोक समय से पहले ही इतिहास के पन्नों में समा गए। किंचुक नाग बताते हैं,
हम जब छोटे थे हम दिल्ली में पढ़े थे तो उनका नाम काफी था, पर ही वाज ऑलवेज नोन एज अ हॉटहेड। एक बार वो इलेक्शन हार गए, स्टोरीज फैले कि ये घर के अंदर 4 दिन के अंदर लिए लॉकअप हुआ है। ही कुड नॉट टेक डिफीट इजीली। इन अदर वर्ड्स ही वाज अ वेरी इमोशनल मैन, ही वाज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन, एंड आई थिंक दैट अल्टीमेटली यही उनके आगे चली गई। यहाँ की ये वाजपेयी साहब बहुत प्रैक्टिकल थे और ये कहीं से भी आगे बढ़ गए, तो वाजपेयी को बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि वो उनका पर्सनैलिटी ऐसा था कि सबके साथ मिलते जुलते थे। हालांकि एंड मिस्टर मधोक वाज अ हॉटहेड, उनके साथ लोग नहीं थे, तो यही प्रॉब्लम था आई थिंक अल्टीमेटली, यही रीजन है। बहुत लंबे रहे, एंड एज यू नो ही डाइड ओनली एट द एज ऑफ 96, वो दिल्ली में रहते थे राजेंद्र नगर में। परंतु आई थिंक नरेंद्र मोदी उनका एडमायर थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मैंने कई बार देखा उनके पास जाते हुए, उनके फ्यूनरल में भी शायद गए थे या उनकी डेड बॉडी देखने गए थे एम्स में जब वो उधर गए थे। तो ही हैड एन एडमायरर इन नरेंद्र मोदी, दैट मे बी ड्यू टू नरेंद्र मोदी पर्सनल आइडियोलॉजी ऑल्सो। एज यू नो नरेंद्र मोदी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वाजपेयी एंड आडवाणी, परंतु उनकी जो थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, उनकी जो थॉट प्रोसेस आर मोर इन लाइन विद दैट ऑफ मधोक आई थिंक, तो इसलिए आई थिंक ही गेव सम प्रॉब्लम्स टू मधोक।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।